अरमान और नव्यांशी के रिश्ते का पता चलते ही लीला को जैसे एक सुनहरा मौका मिल गया था, और वो उदयपुर पहुंचते ही सीधा चौहान पैलेस में शगुन लेकर पहुंच गई थी। लीला की पहली जीत तब हुई जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने वेद से कॉल करके लीला को अंदर आने की इजाज़त लेने का पूछा, और वेद ने उसे अंदर आने दिया था। घर पर कोई नहीं होने की वजह से लीला ने यही सोचा था कि वो शिवांशा को मैनिपुलेट कर पाएगी, लेकिन ठीक उसी वक्त पर वेद आ गया था। हमेशा से अलग वेद लीला से नरमी से बात कर रहा था, हालांकि उसका लहजा तंज भरा था। इस बीच वंश और आराध्या वहां पर पहुंचे। उन्हें लीला से ही नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के बारे में पता चला, जिसे सुनकर वे दंग रह गए थे। लीला के एक हफ्ते में शादी करने के विचार पर वेद ने उसे अच्छा खासा जवाब दे दिया था। भविष्य में उनके रिश्ते जुड़ने वाले थे, इस बात का भी वेद खास ख्याल रख रहा था। वेद ने लीला की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी उन दोनों को शादी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। बाकी आप शगुन लेकर मेरे घर तक चलकर आई हैं, तो मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। बोलते हुए वेद ने आगे बढ़कर शगुन के सामान पर हाथ रखा और कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेद का उस शगुन के सामान पर हाथ रखना भर ये बताने को काफी था कि उसे ये रिश्ता मंजूर है, और वो उस शगुन के सामान को भी स्वीकार कर रहा था। ऐसा है तो फिर नव्यांशी अब अरमान के साथ एक घर में नहीं रह सकती है, लीला ने भौहें उठाकर कहा। ठीक है, मैं नव्यांशी को वापस बुला लूंगा, वेद ने जवाब दिया। नव्यांशी दिल्ली में अरमान के घर पर रह रही है, वंश ने आंखें बड़ी करके कहा। ऐसा लग रहा था उसे अपने ही घर के बारे में कुछ पता नहीं था। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा और फिलहाल के लिए उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने के लिए कहा। यह सही समय नहीं था जब वो लीला के सामने अपने घर की कोई भी बात करे। आराध्या के साथ साथ वेद ने भी वंश की तरफ देखा और फिलहाल उसे चुप रहने को कहा। लीला जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम नव्यांशी को वापस बुला लो। उसका काम वहाँ है और वो अरमान के साथ रह ही रही है, तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? कौन सा हमें पैसों की कमी है जो शादी के लिए हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा? शादी की रस्म रिवाज ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते चलती है, तभी मैं एक हफ्ते का बोल रही हूँ। वेद अच्छे से समझता था कि लीला इस शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही है। लीला के इतने बहाने बनाने के बाद भी वेद ने नामे सिर हिलाया और उसी सख्ती के साथ कहा, मैंने कहा ना, अभी नहीं। बाकी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ एक घर में नहीं रहना चाहिए। नव्यांशी को काम के बीच में यहाँ बुलाओगे तो उसका दिल टूट जाएगा। कहीं उस बच्ची को ये ना लगे कि मैंने तुम्हें इसके लिए भड़काया है, लीला ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। आप चिंता मत कीजिए मिसेज राजावत, ये इल्ज़ाम मैं अपने सिर ले लूँगा, वेद ने लीला के ही लहजे में जवाब दिया। ठीक है, तुम शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं हो, सगाई तो कर ही सकते हैं। कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि चौहान फैमिली और राजावत फैमिली के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है, लीला ने बीच का रास्ता निकालते हुए सुझाव दिया। कौन सा चौहान फैमिली और राजावत फैमिली के बीच पहली बार रिश्ता जुड़ रहा है? गीतिका पहले से ही आपके घर की बहू है। रही बात उन दोनों की सगाई की, तो मेरी फैमिली को अभी ठीक से इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चला है। एक बार डिस्कशन हो जाए उसके बाद मैं अपना फैसला आपको बता दूंगा, वेद ने इतना कहकर बात को वहीं पर खत्म कर दिया था। लीला का वहां आना पूरी तरह बेकार गया। ना तो वो शिवांशा को अकेले में डरा धमका पाई और ना ही वेद को शादी या सगाई के लिए मना पाई। इतनी दूर आने के बाद लीला हार मानकर नहीं जाना चाहती थी। इस बार उसने हल्के सख्त लहजे में कहा, हम लड़के वाले हैं, क्या हमारी इच्छा का जरा भी मान नहीं है? आपकी इच्छा का मान रखकर ही मैंने आपकी तरफ से शगुन स्वीकार किया है, वेद ने शांत लहजे में कहा। इससे पहले कि लीला आगे कुछ कहकर बात को बढ़ाती या एक बार फिर उसे किसी चीज के लिए फोर्स करती, वेद ने बातचीत के विषय को ही बदल दिया। वो बोला, आप पहली बार इस घर में नव्यांशी के होने वाले ससुराल की तरफ से आई हैं, अगर आप खाना खाकर जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वेद ने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। वो अच्छे से जानता था कि लीला वहां रुककर कभी खाना नहीं खाने वाली है। जैसा कि वेद को अंदाजा था, लीला ने सिर हिलाकर कहा, जिस दिन रिश्ते के लिए हाँ कहोगी उस दिन जरूर खाऊंगी। मैंने ना नहीं कहा है, वेद बोला। ठीक से हाँ भी नहीं कहा है, जो सामान लेकर आई थी वो यहीं रखकर जा रही हूँ, क्योंकि तुमने उस पर हाथ लगाकर उसे स्वीकार किया है। बाकी उम्मीद है कि जल्द ही तुम सगाई का मुहूर्त भी निकाल लोगे, लीला ने काफी नरम लहजे में कहा। वेद ने जवाब में हल्के से सिर हिला दिया था। लीला अपने साथ जो शगुन का सामान लेकर आई थी उसे वहीं पर छोड़कर तेज कदमों से चलते हुए जाने लगी। जाते वक्त उसका चेहरा सामने की तरफ था और उसने शिवांशा तक को नहीं देखा था। फिर भी शिवांशा ने वेद के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। शिवांशा ने आज अपनी जिंदगी में पहली बार लीला को इतने आराम से बात करते सुना था। जब वो आखिरी कुछ लाइन कहकर वहां से निकली थी, उसे समझ नहीं आया कि लीला का असली चेहरा आखिर है कौन सा। अगर वो इतनी समझदारी भरी बातें और बर्ताव कर सकती थी तो वो क्यों हमेशा सबको नीचा दिखाती रहती थी, उस पर इतना टॉर्चर करती थी और मौका मिलने पर उस पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करती थी। लीला वहां से चली गई थी, जबकि शिवांशा अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई लीला को जाते हुए देख रही थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई, वंश की तेज आवाज गूंज पड़ी थी, जिसे सुनकर अपने ख्यालों में खोई हुई शिवांशा हल्का हड़बड़ा गई थी। क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वंश ने वेद की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत है, वेद ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर भी मुझे सब कुछ आपके मुंह से सुनना है। क्या आप जानते थे कि नव्यांशी अरमान के घर रह रही है? आप जानते हैं ना अरमान राजावत कौन है? फिर भी आप उस घर के लड़के की शादी अपनी बहन से करवाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? वंश अपने गुस्से पर काबू करके दांत पीसते हुए बोला। वो तेज सांस ले रहा था और अपनी मुट्ठियों को बार बार बंद खोल रहा था। वेद ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, नव्यांशी अरमान के घर रह रही थी और मुझे उन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अरमान पहले से ही नव्यांशी के लिए पसंद था, पर मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता था। फिलहाल मेरे बिना कुछ कहे ही नव्यांशी ने उसे खुद के लिए पसंद किया है। और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया? वंश भौहें चढ़ाकर बोला। हाँ, जाहिर सी बात है, वेद ने कंधे उठाकर जवाब दिया। तुमने भी अपने और आराध्या के रिश्ते के बारे में बताया था, तब मैंने तुम पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। आराध्या और मेरी बात अलग है। आराध्या की कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो हमारे खिलाफ चाले चलने की कोशिश करे। इनफैक्ट उसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है। मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे मिला था, वंश बोला। आराध्या चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वंश के आगे कई बार वो भी हार मान जाती थी जब वो किसी भी बात को आसानी से समझने के लिए तैयार नहीं होता था।
हाँ, तो आराध्या एक अच्छी लड़की है और मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है या फिर उसकी जिंदगी एक अनाथ आश्रम में बीती थी। प्यार के आगे कुछ मायने नहीं रखता है। ना मैंने तुम्हारे मामले में फैमिली बैकग्राउंड और बाकी चीजों का ध्यान रखा, ना ही अपने मामले में। और फिर मैं नव्यांशी के साथ ये भेदभाव कैसे कर सकता हूँ? वेद ने अपना पक्ष रख दिया था। आपकी और मेरी बात अलग थी, पर नव्यांशी की बात अलग है। नव्यांशी को उस घर में उनके साथ जाकर रहना होगा, और वो लीला राजावत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस हमारे घर में आकर तमाशा करने का मौका ढूंढती है। बाकी चीजों को जाने दीजिए। क्या आपको एक बार भी भाभी का ख्याल नहीं आया, जो उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा जाती हैं? आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन उन्हें देखकर आज भी वो बहुत डर गई थी, वंश बोला। वो अभी भी अरमान और नव्यांशी के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके आखिरी कुछ शब्द सुनकर वेद, शिवांशा और आराध्या उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कोई बड़ा झटका लगा हो। और तुम्हें कब से शिवांशा भाभी की फिक्र होने लगी? आराध्या ने भौं चढ़ाकर कहा। वो औरत तो फिर भी बाहर वाली है, तुम तो घर पर रहकर भी उन्हें अपनी बातों से टॉर्चर करते रहते हो। हाँ, पहले मुझे पता नहीं था ना कि उनके साथ इस घर में कितना गलत हो रहा है। भाई उनकी बात नहीं सुनते हैं, इतने महीने बाद भी वो ठीक से अपने दिल की बात नहीं कह पाती हैं, और अब तो हद ही हो गई। भाई उनका सोच भी नहीं रहे हैं और सीधे सीधे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके लीला राजावत को इस घर में आने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर वो इस घर में आई तो भाभी को टॉर्चर करने का एक मौका नहीं छोड़ेगी, वंश ने झुंझलाकर कहा। आराध्या के सामने अपना पक्ष रखने के बाद वंश ने वेद की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे वो औरत इस घर में नहीं चाहिए, और ना ही मुझे नव्यांशी के लिए अरमान पसंद है। आप नव्यांशी के चक्कर में भाभी को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, उन्हें टॉर्चर होने दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आराध्या का मन हंसने का कर रहा था, वहीं शिवांशा को तो जैसे कोई बड़ा झटका लग गया हो। उसके लिए वंश की बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वो किसी सपने की तरह था जब वंश शिवांशा के लिए वेद से लड़ रहा था। वेद ने गहरी सांस ली और आराध्या की तरफ देखकर कहा, कोई अपनी बातों से किसी को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है? आई मस्ट अप्रिशिएट यू आराध्या, तुम सच में इसे झेल ही रही हो। ये यहाँ आराम से रह रही है और इसकी हर बात सुनी जाती है। अगर कोई यहाँ पर सच में कुछ झेल रहा है तो वो शिवांशा भाभी है। आज लीला को इस घर में आने की इजाज़त देकर आपने अच्छा नहीं किया भाई, और अब मुझे यकीन हो गया है कि आप भाभी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। न जाने बंद कमरे में उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है। वंश फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था, हालांकि बोलने के बाद उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसकी बातें सुनकर वेद अविश्वास से हल्का सा हंसा और फिर शिवांशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी और वो बोला, शिवांशा, ऐसा करो कि तुम अपनी चोट के निशाने से दिखा दो। कौन सी चोट के निशान? शिवांशा ने उलझन भरे स्वर में कहा। वही जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। इसने कहा ना कि बंद कमरे में न जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ होता है, तो जो मारपीट तुम्हारे साथ होती है उसके निशान तो रह ही जाते होंगे ना। तो ऐसा करो, आज तुम वंश को दिखा ही दो कि मैं तुम्हारे साथ कितना अत्याचार करता हूँ, ताकि इसे इस बात की संतुष्टि हो जाए कि ये जिस भ्रम में जी रहा है वो सही है, वेद तंज भरे लहजे में बोला। क्या भाभी को मारते पीटते हो? अचानक वंश के मुंह से निकला। पहले से ही वंश की बातें वेद को इरिटेट कर रही थी। ऊपर से आखिरी लाइन सुनकर वो बुरी तरह झुंझला गया था। वेद ने वंश की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आराध्या ने जल्दी से वंश का हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। समझाना क्या है मुझे ये रिश्ता एक्सेप्ट, वंश बोला, लेकिन उसे अपनी बात ठीक से पूरी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि आराध्या उसे खींचते हुए वहां से ले गई।
वंश को देखकर शिवांशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसकी नजर वेद की तरफ गई, जो घूरकर उसकी तरफ देख रहा था। शिवांशा की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। इसी के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी एक छोटी सी बात का वंश पर इस हद तक असर पड़ा था कि उसे ये लगता था कि वेद न जाने शिवांशा के साथ क्या कुछ नहीं करता होगा। इम्पॉसिबल, वेद ने तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और फिर ऊपर जाने लगा। अरे नहीं, मैंने फिर से नाराज कर दिया, अब मेरे क्लास लगने वाली है, मैंने क्यों बताया वंश भैया को। शिवांशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके लिए वेद का सामना करना तब तक ही आसान था जब वो उसे प्यार से बात करता था। उसकी नाराजगी, गुस्से और सख्ती के आगे शिवांशा की बोलती बंद हो जाती थी, और अब तो उसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली थी। बेचारा वंश, न जाने उसे क्या क्या लगता है। खैर, देखते हैं कि शिवांशा की क्लास कैसे लगती है। वैसे आज मैंने बिना गैप के चैप्टर दिया है, तो आप लोग भी समीक्षा करके जाना। अगर आपको कल वापस बिना गैप के चैप्टर चाहिए तो अगले पार्ट पर मिलते हैं।